ओम शांति। हमारे रूटीन कारोबार के बीच भट्टी के ये दिन अपनी विशेष चेकिंग गहराई से जाकर के खुद को देखने की, खुद को समझने की और खुद के पुरुषार्थ को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए ये बीच बीच के हमें मिले हुए स्पेशल चांस है। हम आप सभी कितना दूर से अपने कारोबार को थोड़े समय के लिए चाहे अन्य को सौंप कर, स्थगित कर, एडजस्ट कर, हमने अपने लिए ये 3 दिन निकाले हैं। हमें हमारे अनुभवी रत्नों के द्वारा खजाना तो बहुत मिल रहा है, लेकिन उन खजानों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में लाना, अभ्यास में लाना और उन खजानों को यूज करके उसके द्वारा शक्ति भी अनुभव करना और आवश्यकता पर उन खजानों के प्रयोग से बाबा की मदद का भी अनुभव करना। हमारी ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत मूल्यवान जीवन है, जिसमें बाबा ने कहा है कि अगर युक्ति युक्त, योग युक्त एक कदम भी हमने भरा तो वो पद्मों की कमाई कराने वाला हमारा कदम बन सकता है। तो जिस जीवन में इतनी श्रेष्ठ कमाई का भाग्य हमें मिला हुआ है, उस ईश्वरीय जीवन के जितने भी दिन, जितना भी समय हमें मिला है, जैसे साकार बाबा, हमारी मीठी प्यारी मम्मा, इन सबको मिले हुए समय में आपने ऐसा पुरुषार्थ किया जो अपनी कर्मातीत अवस्था की महसूसता सिर्फ खुद ने नहीं, जो उनके साथ थे ऐसे साथियों ने भी की। अब समय है, आने वाले हलचल के समय के दौर में हम अपनी अवस्था को इतना अचल, इतना अडोल, इतना निर्बंधन बनाएं जो सहज हमारी स्थिति अन्य आत्माओं की सेवा का साधन बन जाए। हम विशेष आज सेवा का जो बार बार अव्यक्त बाप दादा ने अंतिम स्वरूप सुनाया है, आज भी आदरणीय दीदी जी ने इस विषय की काफी गहराई में हमें ले गई हैं, और वो है मनसा सेवा और अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। हम सुनते हैं, बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। बाबा ने भी कहा है कि अंत में हे शांति देवा, हे देव, हे देवियों के रूप में आपके भक्त आपका साक्षात्कार करना चाहेंगे, पुकार करेंगे। और उस समय हम जिस अवस्था में आज है, अगर उस अवस्था में हमारा साक्षात्कार होगा तो क्या हमारे भक्तों को हम में भावना बैठेगी? बैठेगी भावना? नहीं बैठेगी। वो पहचान ही नहीं पाएंगे ये कोई हमारे इष्ट देव या इष्ट देवी है। इसीलिए हमें अपनी अपनी संपन्नता तक सभी को समय से पहले पहुंचना है। अंतवाक शरीर के द्वारा वही सेवा है जो हम किसी आत्मा तक पहुंचे किसी संगठन में पहुंचे और अनेकों को शक्ति देने का, करंट देने का कोई एक अलग ही प्रकार का एहसास, अनुभूति हम जहां सूक्ष्म रूप में पहुंचे वहां करा के आए। तो ऐसी गहन स्थिति के लिए कुछ स्वयं से चेक करने की आवश्यकता है, स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता है, और जहां कमी कमजोरी है उन कमी पेशी को भर करके हमें बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाला ब्रह्मा कुमार बनना है। पहला प्रश्न है, दिन भर में अशरीरी स्थिति का अभ्यास कितना है? मुझे खुद को चेक करना है। पूरे दिन में अशरीरी स्थिति के अभ्यास के लिए मैं कितना समय निकालता हूँ? उससे बढ़ाने के लिए अपनी दिनचर्या को प्लान करें। अच्छा होगा अगर हम मिनट टू मिनट की दिनचर्या, हमारी जनरल दिनचर्या फिक्स होती है, उसे लिखने का प्रयास करें। कितने बजे उठेंगे, कितने बजे तक योग करेंगे, योग के लिए स्पेसिफिकली और उसमें भी अशरीरी स्थिति के लिए मैं कौन से समय में कितना समय निकाल सकती हूँ। चाहे वो नुमा शाम का समय हो सकता है, चाहे वो अमृत वेला का समय हो सकता है, चाहे वो रात्रि सोने से पहले का समय हो सकता है, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को सेट करें। बाकायदे लिखे उस अपनी दिनचर्या को। सभी से निवेदन है जिसके भी पास डायरी पेन है वे उसे खोल करके अपने आप में गहराई में जाकर चेक करके लिखें। एक बार रतन मोहिनी दादी जी से मैं मिल रही थी और दादी जी को मैंने पूछा कि दादी, समय अनुसार पुरुषार्थ के लिए आपका क्या इशारा है? उन्होंने दो शब्द कहे। एक कहा, डेड साइलेंस का अनुभव बढ़ाओ, और दूसरा कहा, अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। लेकिन ये अभ्यास से होगा, इसीलिए उसे दिनचर्या में हमें कोई स्पेशल टाइम देना होगा, चाहे वो 10 मिनट है, 15 मिनट है, लेकिन वो समय मेरा विशेष अभ्यास का समय हो। दूसरा प्रश्न है, क्या मैं आत्मा स्वयं को निर्विघ्न अनुभव करता हूँ? कौन से सूक्ष्म बंधन अब भी उड़ती कला में बाधक है? खुद ही खुद को चेक करें। क्या मैं स्वयं को फ्री बर्ड, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कर सकता हूँ? ऐसे कौन से बंधन है जो मुझ आत्मा को बांधते हैं? वो बंधन मोह का बंधन हो सकता है, उसकी भी गहराई में जाओ। आसक्ति का रूप हो सकता है, होना चाहिए मिलना चाहिए का रूप हो सकता है, मिला होता तो बहुत अच्छा होता, ये सूक्ष्म आशा हो सकती है। कोई स्थूल सूक्ष्म प्राप्ति के प्रति हमारी सूक्ष्म लालच हो सकती है, कोई देहधारी का प्रभाव हो सकता है जिसमें हम ये महसूस करते हैं कि कोई भी कार्य वहां कहे बिना वहां पूछे बिना करना मेरे लिए संभव नहीं, ये भी देहधारी का प्रभाव है। तो देहधारी का प्रभाव, सूक्ष्म आकर्षणों का प्रभाव, अपने मान शान अभिमान अपमान का प्रभाव, कौन सा बंधन है जो मेरी स्थिति को उड़ती कला में ले जाने में बाधक है? उसे खूब गहराई में जाकर चेक करें, चिंतन करें और उसे अपने पास नोट करें। अभी तक हम संपन्न संपूर्ण नहीं बन पा रहे हैं, ऐसी कोई कमजोरी कोई बंधन हम सबके पास है। अपने देह का बंधन हो सकता है बीमारी के रूप में, या कोई दैहिक रूप में कमजोरी के रूप में कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो मुझे बांधता है तो मैं उड़ती कला में जा नहीं सकती। बंधन चाहे लोहे की जंजीर है चाहे सोने की जंजीर है, लेकिन पिंजड़ा पिंजड़ा है, जंजीर जंजीर है। चेक करें और अपने पास नोट करें। क्या महसूसता हो रही है? ऐसे कोई बंधन अभी तक रहे हुए हैं ये अनुभव होता है तो थोड़ा हाथ उठाएं। मैं पूछूंगी नहीं कौन सी कमजोरी है, सिर्फ लगता है कि अभी कमजोरी है बंधन है और उसे तोड़ने की आवश्यकता है, वो थोड़ा हाथ उठाएं। थैंक यू। देखिए हम में से मेजॉरिटी महसूस कर रहे हैं कि कोई न कोई स्थूल या सूक्ष्म बंधन है, तो उसे ढूंढे उसे नोट करें, क्योंकि उड़ वो ही सकेगा जो निर्बंधन होगा। अंत में छोटा सा बंधन भी रहा हुआ होगा वो आत्मा को सहज उड़ने नहीं देगा। बावनी कहा है मैं पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, लेकिन पलकों पर बैठने जितना लाइट हमें बनना होगा। कोई बंधन नीचे से खींच रहा होगा तो वो हमें फ्री बर्ड होकर के आसमान तक उड़ने नहीं देगा, ऊंची स्थिति तक उड़ने नहीं देगा। हरे कम से कम ऐसा एक बंधन भी जरूर ढूंढ करके लिखें, एटलीस्ट एक। अगर ज्यादा मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम और आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए किन कमजोरियों पर विजयी बनना चाहेंगे? सबसे पहले हम अलग अलग परिस्थितियों को अपने सामने इमर्ज करें, चेक करें कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो अब तक भी मुझे हलचल में ला देती है, और जब हम हलचल में आते हैं तो पहला काम जो हम करते हैं वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं। जब हमारी अवस्था ठीक नहीं होती है, जरा अपने को इमर्ज करके देखो, जब हमारी अंदर की स्थिति अंदर की अवस्था ठीक नहीं होती है उस समय हमारी मनसा क्या होती है, चेक करो मनसा क्या बनती है। कोई थोड़ी सी बात कहेगा, इशारा देगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे समय पर जनरल में कोई बात सुनाई जाएगी तो भी उसे हम पर्सनल लेकर के बायस हो जाते हैं। जब थोड़ी सी हलचल वाली स्थिति बनती है तो हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जब थोड़ी सी ऊपर नीचाई हमारी अवस्था में आती है तो उस समय सेवा के कार्य में भी हम कर्तव्य निष्ठ नहीं हो सकते हैं, सोचते चले जाएं। अब तक अनुभवी बैठे हैं सभी, हरेक के पास बाबा का बनने के बाद ऐसी स्थूल या सूक्ष्म बातें आई होगी जो अपनी अवस्था को हलचल में लाती है। हमारा निश्चय खत्म नहीं होता है, हम बाबा से दूर नहीं जाते हैं बेशक, लेकिन अंदर की अवस्था जितनी स्थिर होनी चाहिए उतनी स्थिर भी नहीं है। चेक करें ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जो हमारी अवस्था को अब भी हलचल में लाती है। अपमान की फीलिंग, अभिमान की फीलिंग, हमने नहीं सोचा था ऐसा कुछ अचानक ऐसी कोई घटना का घट जाना, अचानक किसी की मृत्यु का समाचार मिलना, परिस्थितियों की लंबी लिस्ट है। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात का इशारा दिया है कि जिसकी जो कमजोरी होगी उसी दरवाजे से माया प्रवेश करेगी। इसीलिए मुझे मेरे कमजोर दरवाजे को ढूंढना बहुत जरूरी है। ऐसा मेरे जीवन का कौन सा कमजोर दरवाजा है जिसमें से माया अंदर घुस सकती है, प्रवेश हो सकती है, चेक करें। अगर हम खुद खुद को रियलाइज कर सकेंगे यूं करना तो बहुत अच्छा हम सबको आता है, लेकिन आज थोड़ा यूं के बजाय हम यूं करके देखें, अपनी तरफ तीन अंगुली लेकर के देखें। मुझे दूसरों पर कोई भी दोष नहीं डालना है आज, कोई वकालत नहीं करनी है, उसके कारण ऐसा है, मुझे मिला ही इतना है, मेरा तकदीर ही ऐसा है, ऐसी कोई भी बात का आधार आवरण मुझे नहीं लेना है। खुद को बिल्कुल आवरण मुक्त बना करके चेक करें, कौन से आवरण माया का काम कर जाते हैं, अवस्था को हलचल में ले आते हैं। भट्टी के इन तीन दिनों में हमें इन कमजोरियों पर मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है और अपनी अवस्था को बिल्कुल दृढ़ता संपन्न बनाने के लिए इन तीन दिनों में रियलाइजेशन, चेकिंग और चेंज के द्वारा खुद को एक नई रूपरेखा में अनुभव करके यहां से जाना है। चौथा प्रश्न है, ईश्वरीय जीवन मिलने से मुझ आत्मा ने किन किन प्राप्तियों का अनुभव किया? बाबा का बनने के बाद ज्ञान में चलने से मैंने अब तक किन किन बातों में प्राप्तियों का अनुभव किया? मुझे करंट मिली, शक्ति मिली, हिम्मत मिली, तो किस रूप में मिली? बाबा के साथ का अनुभव मिला, किस रूप में मिला? उन बाबा के साथ के उन अनुभवों को स्मृति में लाते महसूसता में समा जाए। अपने सारे अलबेलेपन को थोड़ी सी देर छोड़ देना, थोड़ा नींद का नशा हो तो एक बार उठ के खड़े हो जाना और खुद को फ्रेश करके बैठ जाना, लेकिन उन अनुभव में अपने को संभालो। परिस्थिति आई, बात आई, किस रूप में बाबा ने मुझे मदद दी, साथ दिया और परिस्थिति यूं मक्खन से बाल की तरह निकल गई। उन अनुभवों को याद करो, लिख सके तो लिखो, क्या महसूसता मुझे मिली उस समय, और दिल की गहराई से साथ मिलने के लिए, निवारण मिलने के लिए, बात बड़े से छोटी हो गई इसलिए, हम विजयी बन गए इसलिए, दिल से बाबा का बहुत गहराई से शुक्रिया करें। अपनी डायरी में दो शब्द भी बाबा को लिखें, बाबा थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो कुछ भी दिया है हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उन अनुभवों को याद करें, महसूसता बढ़ाएं और बाबा को दिल से थैंक्स दें। चले जाएं अपने में, आसपास क्या हो रहा है भूल जाएं, उन पिछले अनुभवों में बह जाएं जहां मुझे बाबा ने बहुत मदद की है। बाबा की मदद के अनुभव तो है ना, जिसको आज तक कभी बाबा की मदद का कोई अनुभव है ही नहीं, वो जरा हाथ उठाए। देखो एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। तो कहां कहां मदद मिली, थोड़ा अपने अंदर चले जाएं। कुमार है, लौकिक से शादी का प्रेशर आया और बाबा ने मदद की और हम बच निकले। अदर कुमार है, युगल ज्ञान में नहीं चल रही है, हमें अपने नियम मर्यादा में पक्का होना है और बाबा की कैसे भी मदद मिली और हम वो कर पाए। अपने पिछले ज्ञान में आए उस बचपन के अनुभव से अपने अनुभवों को इमर्ज करे। कहां कहां मुझे बाबा की मदद मिली। आज से हमें बाबा की मदद के एक नवीन प्रकार के अनुभव को शुरू करना है। जितना अंदर से दिल साफ होती जाएगी, जितना हमारी दिल का स्नेह बाबा से जुटता चला जाएगा, वो तार में अभी जो गांठें हैं, बंधन की गांठें खुलती जाएगी। तो हम सबके जीवन का एक बहुत सुंदर अनुभव टचिंग का होना शुरू होगा। बाबा के पास गए, बाबा के सामने गए आए और जो राइट कार्य राइट वे में करना होगा, हमें एक्यूरेट वैसी ही टचिंग मिलेगी। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, हमारी सभी बड़ी दादियों के ये अनुभव रहे कि बाबा के कमरे में गए, बाबा से रूरी हान की, बाबा ने कोई बात को टच किया और वैसा ही हुआ जैसे टचिंग मिली थी। इससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो व्यर्थ सोच, एक्स्ट्रा सोच, लंबी लंबी सोच, व्यर्थ कर्म में हमारा समय और शक्ति जा रही है, उससे हम बच जाएंगे। हम बार बार बाबा के सामने जाएं। बाबा का कमरा होना जरूरी नहीं है। बार बार बुद्धि से बाबा के सामने जाएं, जैसे खींच होती है ना कोई बात में, जो अपना प्रिय होता है उससे शेयर कर ले। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात बनती है, जब तक हम अपने दोस्त से, अपने मार्गदर्शक से, अपने हमजिंस से शेयर नहीं करते हैं, हमको मजा नहीं आता है, कह देने से अच्छा लगता है। वो हर बार मेरा दोस्त, हर बार मेरा मार्गदर्शक, हर बार मुझे पहले याद आने वाला अगर कोई हो तो वो मेरा बाबा हो। बुद्धि से मैंने बाबा को इमर्ज किया, बाबा से रूढ़िहान की। बाबा को मैंने बात बताई और बाबा से मुझे जवाब मिला। ये गहरी अनुभूति हम तभी कर सकेंगे जब हम प्राप्तियों की मस्ती में मस्त होंगे। कंप्लेनिंग बेबी, हाँ, फरियाद करने वाला बच्चा, फरियाद करने वाली बीबी, फरियाद करने वाला कर्मचारी किसी को भी पसंद नहीं। अपेक्षा यही होती है कि कर्तव्यनिष्ठ वो है जो अपने कर्तव्य को समझ करके उसमें से रास्ता निकाले, ना कि ऑलवेज कंप्लेन बॉक्स बनकर बैठे। तो जब भी हम बाबा के पास बैठे, शुक्राने के साथ बैठे, कंप्लेन्स के साथ नहीं। बाबा को भी कंप्लेन बॉक्स सारा टाइम तो पसंद नहीं आएगा ना। इसीलिए आज से किसी भी बात में कंप्लेन करने के बजाय हम बाबा के आगे बात को रख दे, बाबा को सौंप दे और फिर स्वयं को निर्संकल्प कर दे। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ओके, फाइन, थैंक यू। हाँ, बीच बीच में मुझे हाथ इसीलिए हिलवाने पड़ते ताकि आप थोड़ा जागृत रहे। हाँ? अब पांचवा प्रश्न है, बाबा से मिले हुए वरदानों को याद करें। रोज हमें बाबा एक वरदान तो दे रहे हैं ना, और ऐसे यहां कई भाई बहन बैठे होंगे जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा से भी व्यक्तिगत वरदान लिए होंगे। कौन कौन ऐसे बैठे, जरा हाथ तो उठाएं, जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात में वरदान लिए हैं। बहुत कम है लेकिन फिर भी काफी है। उन वरदानों को इमर्ज करो। और जो पर्सनल नहीं मिले हैं, वो इतने सारे वरदान अब तक मिले हैं, उन वरदानों में से कोई एक वरदान को याद करो। कोई एक वरदान जो बाबा से आपको मिला हुआ है। कई ग्रुप्स को वरदान मिले हैं, जैसे बाबा ने कुमारों के लिए बहुत सारी बातें कही हैं और कुमारों को बहुत एक्स्ट्रा वरदान दिए हैं। किस किस ने ये मुलाकातें कुमारों के साथ की, अब तक की बाबा की जो है वो पढ़ी है, थोड़ा कुमार ग्रुप से हाथ उठाएं, जिन्होंने वो सारी पढ़ी है बाबा की आशाओं को, बाबा के वरदानों को। स्पार्क वालों ने बहुत मेहनत करके अधर कुमारों के लिए बाबा ने जो कहा है, कुमारों के लिए बाबा ने जो कहा है, उसकी किताबें तैयार की है। अपने पास उस किताब को संभव हो तो रखना। और बाबा ने जो बहुत विशेष वरदान आपके ग्रुप को दिए हैं, उन वरदानों को अलग से होमवर्क करके कभी बैठकर लिखना। क्या क्या स्पेसिफिक आप ही के ग्रुप को बाबा ने कहा है। हमें उन वरदानों को जीवन में अनुभव करने पर अब काम करना है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। बाबा से मिले हुए वरदानों को याद करें। किन वरदानों पर मुझ आत्मा को समय अनुसार विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। हर एक की अलग अलग बात होगी, हर एक का कोई कोई योग बहुत करता होगा, लेकिन समय पर ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते होंगे। ज्ञान समय पर कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है, फिर याद आता है अरे बाबा ने तो कितनी बातें कही है। हर एक की विशेषता भी अपनी अपनी, हर एक की कमजोरी भी अपनी अपनी। तो ऐसे कौन से वरदान है जिस पर हमें अभी पुरुषार्थ पर अटेंशन देना जरूरी है। मैंने मिसाल दिया है एक, जैसे हम सब ब्राह्मणों का एक कॉमन लक्ष्य है बाप समान स्थिति प्राप्त करना, सभी का है ना, सभी का है ना, कोई कोई हाथ नहीं उठ रहे हैं। ओके थैंक्स। जबरदस्ती भी नहीं उठाना, लेकिन आफ्टर ऑल हमारे ब्राह्मण जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो लक्ष्य है बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति। तो वरदान बहुत मिले हैं, उन वरदानों में से कौन कौन से ऐसे वरदान है जिस पर मुझे अभी और आगे बढ़ने की दरकार जरूरत है, और उसके लिए अपनी योजना क्या होगी? 6 मास में इस पर ध्यान देंगे, 1 साल इस पर ध्यान देंगे, 1 मास इस पर ध्यान देंगे, हमारी प्लानिंग खुद के लिए क्या होगी? हमें समय से पहले, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी टूलेट का बोर्ड लग गया है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? लग गया है ना, तो अभी हमें पुरुषार्थ की बहुत ज्यादा मार्जिन आगे मिलने की संभावना है क्या? नहीं है। बाबा ने कहा है एक बार टूलेट का बोर्ड लगने के बाद जो हिसाब किताब होगा वो जितने का उतना होगा। समय से पहले किया उसका 1 का पदम गुणा है, बोर्ड लगने के बाद जो किया जितने का उतना। तो इस हिसाब से हमें अभी कितना अपने आप को तैयार करना होगा। अपनी योजना बनाई, बाबा भी कभी कभी अव्यक्त वाणियों में डेट पूछते हैं ना, खुद को कौन सी डेट तक तैयार करेंगे। डेट छोड़ो, कम से कम हम 3 मास की योजना, 6 मास की योजना, वार्षिक योजना कुछ तो बनाए आज ना, लिखे अपनी प्लानिंग लिखो। बाप समान स्थिति के लिए कितना समय मुझे चाहिए और उसमें हम क्या क्या स्पेशल करेंगे, लिखते चले जाएं। हम अपने क्रोध पर संपूर्ण विजयी बनेंगे, हम अपनी आसक्ति पर संपूर्ण विजयी बनेंगे, हम अपने देह भान को 100% खत्म करेंगे और आत्माभिमानी स्थिति का एक बहुत गहरा अनुभव करेंगे। हमारे साकार बाबा ने शुरू कहाँ से किया, सब अनुभवी बैठे जानते इतिहास को, बाबा ने शुरू कहाँ से किया? मैं आत्मा हूँ ये लिख लिख करके भी साकार बाबा ने अभ्यास पक्का किया। मैं आत्मा कितना और कैसे स्वयं को तैयार करूं, नोट करें। अगर समय चाहिए तो कोई बात नहीं, बच्ची के 3 दिन आपके पास समय भी है। इन प्रश्नों का जिसका उत्तर अभी तुरंत नहीं मिला है, जब भी फुर्सत मिले एकांत में बैठ जाएं। कितनी हमारी वरिष्ठ दादियों के स्थान बने हुए हैं, जिन स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है, चले जाए वहां और जवाब ढूंढे। लास्ट प्रश्न है, अपनी संपन्नता के लिए, अपनी संपन्नता के लिए कौन सी विशेषताओं पर मुझे पुरुषार्थ करना होगा? सबको क्या करना है मैं आज नहीं सोचूंगी, मुझे आज ये सोचना है कि मुझे कौन सी विशेषताओं को भरना है। कई बार हम दूसरों की विशेषताओं को देखते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा ईर्ष्या भाव, थोड़ा सा 19-20 वाला भाव आ जाता है। इसको बहुत चांस मिलते हैं, इसको ही पहले पूछा जाता है, इसको ही आगे रखा जाता है। आज इसका जवाब ढूंढे, कौन सी विशेषताएं हैं जो हमें हर कार्य में आगे ला सकती है, पुरुषार्थ में, सेवा में, स्थिति में, अवस्था में। क्या पुरुषार्थ मुझे स्वयं के लिए करना है? क्या पुरुषार्थ होगा आज से किसी के लिए मेरे मन में कभी अभाव नहीं आएगा, कभी किसी के प्रति मुझे ईर्ष्या करने की आज से जरूरत नहीं है, कभी कहीं भी मेरा मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, कभी भी किसी बात में मुझे दिल से कष्ट होने की जरूरत नहीं है। ये पुरुषार्थ है। आप चेक करें और लिखें। जिन भी प्रश्नों का उत्तर बाकी है, हम 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अपने अंदर जाकर चेक करके जो लिखना बाकी है वो लिखेंगे और फिर लास्ट 5 मिनट सब कुछ बंद करके एकदम एकाग्रता पूर्वक हम बाबा से दृढ़ता पूर्वक एक एक अपनी तरह से अपनी संपन्न स्थिति का एक कल्पना चित्र बनाएं। जैसे मैं मिसाल देती हूं, साकार बाबा ने जो अंतिम पुरुषार्थ किया, बाबा संदेशी से कहते थे ऊपर जाकर देखकर आओ, ऊपर वाले बाबा में और नीचे वाले बाबा की चमक में कितना अंतर है। बाबा ने चेक किया अपने को। संदेशी आकर कहती थी बाबा ऊपर वाले बाबा की तो बहुत चमक है, तो बाबा को समझ आता था कि अभी वो योग बल से चमक मुझे अपने अंदर भरनी है। और बाबा सुबह सुबह जल्दी उठ करके खुद से मेहनत करते थे। ऐसे हम अपने कल्पना चित्र को तैयार करें और अपनी वो संपन्न स्थिति और मेरी आज की स्थिति में कितना अंतर है और वो अंतर मुझे भरना है। ओम शांति।